كذبت عاد للمرسلين، झुटलाया आद ने रसूलों को। आप देखिए कि यहां से अब जिक्र हो रहा है हूद अलैहिस्सलाम का, और हूद अलैहिस्सलाम जो थे वो कौमे आद की तरफ भेजे गए थे। और अंबिया जो हैं ये क्या है कि इंसानियत की मेराज हैं। अंबिया जो है उनमें से हर एक का किरदार जो है वो हमारे लिए उस्वाए हसना है, रोल मॉडल है। और इन उनकी शख्सियत, उनके किरदार और उनकी बातों, उनके रवैये से मुझे और आपको अपनी जिंदगी के लिए उसूल तय करने हैं, अपनी जिंदगी के, अपने किरदार के खदो खाल जो है ना उसका तायुन करना है। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि झुटलाया आद ने रसूलों को। कज़्ज़ाबत क्या है? ये मोनस है, सीगा मोनस, और आद एक कौम का नाम है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो कौम के लिए मोनस का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? हमें तो लगता है ना कौम मुजक्कर है, तो आद क्या है? आद इनके जद्दे आला का नाम था, जिसके नाम पर कौम का नाम जो था वो पड़ गया। और आद को कबीला तसव्वुर करके सीगा मोनस जो है वो लाया गया है। झुटलाया आद ने अल मुरसलीन, मुरसल की जमा है मुरसलीन। मुरसल के माने क्या होते हैं? भेजे गएओं को। तो भेजे कौन थे? रसूल। और रसूल कौन होते हैं? अल्लाह ताला के सफीर, अल्लाह ताला के एम्बेसिडर। अल्लाह ताला के एम्बेसिडर फरिश्ते होते हैं और रसूल होते हैं। तो आद ने रसूलों को झुटलाया। अब मुरसलीन जो है वो जमा लाया गया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक रसूल का झुटलाना दरहकीकत तमाम रसूलों का झुटलाना है। एक रसूल की तकजीब तमाम रसूलों की तकजीब है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कहते हैं? कज़बत आदुनिल मुरसलीन, आद ने रसूलों को झुटलाया। इज क़ाल लहुम अखूहुम हूदुन अला तत्तकून, जब कहा उनसे उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम ने, क्या कहा? अला तत्तकून। अब आप देखिए कि हूद अलैहिस्सलाम उनके लिए कोई अजनबी शख्स नहीं थे। कुरान जो है बड़े प्यार से, बड़े जो है वो बड़ी खूबसूरती से कुरान जो है वो बताता है, अखूहुम उनके भाई थे। गोया के कौम के लोग, कौम आद हूद अलैहिस्सलाम से वाकिफ थी, हूद अलैहिस्सलाम के माजी से, उनके हाजिर से, उनके किरदार से, वो उन्हीं के दरमियान पले बड़े थे, है ना। पूरी जिंदगी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की इनके सामने थी। तो हूद अलैहिस्सलाम उनके लिए कोई अजनबी शख्स नहीं थे। हूद अलैहिस्सलाम का नाम, नसब और इलाका क्या है? कि हूद बिन शालिख। तो बास कहते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो शालिख के बेटे थे। और मजीद जो है वो क्या है कि आगे जिनका सिलसिला जो है वो फिर साम बिन नूह, यानी नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है हूद अलैहिस्सलाम का। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो जो गुनाहगार थे, जो जिन्होंने गलत काम किए थे, वो सब डूब गए थे। तो जो लोग कश्ती में सवार हुए थे उन्हीं में से मजीद जब सिलसिला चला उनका, तो उसमें ये लोग थे, कौम आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। तो आपका नसब इस तरह भी बताया जाता है, हूद बिन अब्दुल्ला, लेकिन एंड पे जाके फिर साम बिन नूह जो है वो आता है। तो दो तरह से, और जो है ये एक अरबी कबीला था जो आद का कबीला था। और ये कबीला कहाँ आबाद था? अमान और हजर मौत के दरमियान ऊंचे ऊंचे जो टीले थे ना, रेत के टीले और ऊंचे टीले, तो अहकाफ वहां पे था। और ये इलाका समंदर के किनारे पर था। ये लोग जो थे बड़ी ही एक अजीम कौम थी। मैं थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखूं कि क्योंकि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अला तत्तकून, कि तुम डरते क्यों नहीं हो। تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے اصول جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کیوں نہیں کرتے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم کیا کام کرتی تھی اور کیسی تھی یہ قوم کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، کیوں ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیں، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج ملا، ایک پہلے قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام کی قوم، اور ایک وہ عروج والی قوم تھی، اس کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج ملا وہ یہی قوم تھی. جیسے سورۃ الاعراف آیت 69 دلیل ہے اس کی، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اللہ کے اس فضل و انعام کو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا نوازا تھا، عروج، ترقی. پھر دوسری بات کہ ان کا جسمانی جو ہے وہ خد و خال کیسا تھا، جسمانی حیثیت سے یہ کیسے تھے؟ بڑے تنو مند اور زور آور لوگ تھے، یہ بڑے جو تھے وہ مضبوط جسم والے تھے. اس کے لیے دلیل ہے سورۃ آراف کی آیت نمبر 69، وزادکم فی الخلق بسطہ، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب وسعت دی، خوب تنو مند بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے زبردست جو تھے وہ جسم دیے تھے، اور بڑے یہ ڈیل ڈول والے تھے اور مضبوط جسامت رکھتے تھے، کوئی معمولی قسم کے یہ لوگ نہیں تھے. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ قوم دنیا میں موجود تھی اور بڑی ترقی یافتہ تھی، تو خود قرآن سورۃ فجر آیت 8 میں جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی. اور ملک تھے اور قومیں تھیں، لیکن کیا تھا کہ دنیا میں ملکوں میں اس قوم جیسی جو تھی نا اور قوم کوئی نہیں تھی. اور یہ قوم جو تھی، عروج اس نے کس چیز پہ حاصل کیا؟ اس قوم نے، یہ قوم جو تھی اس کا تمدن بڑا شاندار تھا، اونچے اونچے ستونوں والی بلند و بالا عمارتیں یہ بناتے تھے، اور اس خصوصیت میں یہ دنیا میں مشہور تھی کہ جو ہے وہ ایسی عمارتیں یہ بنا رہی تھی جس میں جو تھے وہ لمبے لمبے اونچے اونچے جو تھے وہ ستون تھے، اور وہ عمارتیں بھی ایسی تھی جو بڑی ہی بلند تھی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، سورۃ فجر آیت 6 اور 7، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ارم ذات العماد، تو یہ ستونوں والے تھے اور یہ آدھے ارم. تو کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں آدھے اولا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ وہ قوم تھی کہ جس کو جو ہے وہ عاد کہا جاتا ہے، آدھے اولا کہا جاتا ہے، اور یہ جو تھی وہ بڑے بڑے لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں جو تھی وہ بناتی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ جب ان کو مادی ترقی ملی، جسمانی لحاظ سے یہ بڑے مضبوط تھے اور مادی ترقی بھی تھی، تو اس چیز نے ان کو بڑا متکبر کر دیا تھا اور ان کو اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا. حامیم سجدہ آیت 15 دلیل ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور. تو آپ دیکھیں کہ طاقت کا نشہ اور دولت کا نشہ اور ترقی کا نشہ جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے کہ जो है वो किबर पर आमादा करता है। तो इन लोगों ने भी जो है वो किबर किया। फिर इनका आप देखिए कि जो सियासी निजाम था ये चंद बड़े बड़े जब्बारों के हाथ में था, कोई उनके आगे दम नहीं मार सकता था, है ना। जैसे सूरत हूद आयत 59 में आप ये बात पढ़ चुकी, वतबू अमरा कुल्ले जब्बार इनानीद, कि इन्होंने हर जब्बार दुश्मन हक के हुक्म की पैरवी की। जब्बार जबर करने वाले थे और दुश्मन हक इस्लाम के मुखालिफ थे वो लोग, और कौमे आज जो थी वो क्या करती थी, उनकी पैरवी करती थी। तो गोया के होता है ना कि चंद बड़े बड़े जालिम लोगों के हाथों में हुकूमत आ जाए, तो ऐसे लोग थे जिनके हाथों में इनका सियासी निजाम था। अच्छा, फिर इस कौम का मजहब क्या था, मजहबी हैसियत कैसी थी? तो मजहबी हैसियत से अल्लाह ताला की हस्ती के मुनकर नहीं थे, शिर्क में मुब्तिला थे, अल्लाह को मानते तो थे लेकिन वो ये बात मानते नहीं थे कि एक अल्लाह की बंदगी जो है वो करनी चाहिए। और कहते हैं कि इनके तीन बुत थे जिनके नाम समद, समूद और हर थे। समद, समूद और हर, तीन इनके बुत थे, और ये उनसे अपनी जो जो भी अपनी जरूरियात थी, अपनी चीजें थी, और उनसे वो ये चीजें जो थी वो मांगते थे और अपने बुतों को जो थे ये मानते थे। फिर आप देखिए कि अब आप देखें कि ऐसी कौम है, इतनी तरक्की याफ्ता है, और हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं अला तत्तकून, कि तुम जो है वो डरते क्यों नहीं हो, शिर्क कर रहे हैं और वक्त का पैगंबर है, इन्हीं के दरमियान पला बड़ा है, इन्हीं का भाई है, इन्हीं में से है, इन्हीं जैसा है, लेकिन अल्लाह का पैगाम लेकर जो है वो अल्लाह की तलवार बनकर, अल्लाह की दीन की ललकार बनकर इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार रसूल हूं। आप देख लीजिए कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम इन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान जो हूं ईमानदार हूं, और गोया के मैं अमीन हूं, मैं ऐसे ही नहीं हूं, बल्कि ये कि तुम मुझे जानते हो कि मैं जो है वो मेरी इमानत को, मेरे मामलात को, मेरे किरदार को, तो मैं तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूं। इससे क्या बात पता चलती है कि दाई का किरदार बड़ा खरा होता है। तो दायाना किरदार जो अदा करने वाले हैं दाई जो हैं, मैं भी और आप भी, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि दाई के ये फराइज में से है कि उसको अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिफाजत करनी पड़ती है ना। और ये कैसे थे कि ईमानदार थे। तो हर नबी जो है वो ईमानदार होता है, कैसे, अल्लाह के पैगाम में वो कमी बेशी नहीं करता, अल्लाह का पैगाम जूं का तू पहुंचाता है, जरा बराबर कमी बेशी नहीं करता, ना उसको करने का हक होता है और ना ही वो करता है। दूसरी बात ये कि अपने रवैये और अमल के एतबार से कि लोगों के दरमियान भी वो ईमानदार होता है, कि लोग अगर उसको चीजें देते हैं तो उसमें जो है वो खयानत नहीं करता। फत्तकुल्लाहवातीउन, फिर कहते हैं कि लिहाजा तुम अल्लाह से डरो, लिहाजा तुम अल्लाह की अतात इख्तियार करो, और साथ ही वाती ऊ नी था, या गिर चुका है, हरफे इल्लत है, और मेरी भी अतात इख्तियार करो। तो ये कौम जो थी इसने दुनिया में जब तरक्की हासिल की और शिर्क में जब ये मुब्तिला हो गई तो थी बड़ी कद आवर, कद इसका बड़ा लंबा था और थी भी बड़ी मजबूत, और उसके साथ साथ थी ये सरकिश, क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान जो है उसके बाद उसके पास दौलत है या उसके पास जो है वो किसी चीज में अल्लाह ताला ने उसको तरक्की दी है, वो तामीर में या किसी भी चीज में तरक्की उसने हासिल कर ली है, तो क्या है कि उसके अंदर एक किब्र और एक गुरूर जो है वो पैदा हो जाता है। जो है अब दोबारा उसको कहा जा रहा है कि फत्तकुल्लाह वातीउन, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात इख्तियार करो। तो तकवा ही जो है वो ईमान की जिंदगी की इब्तदा है और ईमान की जिंदगी की इंतहा भी है, और तमाम मसाइल, परेशानियां, गुनाह और अब तक की ज्यादतियां जो हैं उनका इलाज है। कि अब पैगंबर जो है उनसे क्या कह रहा है, पैगंबर उनसे क्या कह रहे हैं कि मैं जो अल्लाह का पैगाम तुम्हें दे रहा हूं कि तुम एक अल्लाह की बंदगी करो, मेरी अताअत करो, तो असल बात क्या है कि मैं हूं अल्लाह का रसूल और मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूं वो सही सही सच सच बात जो है वो तुम्हें कह रहा हूं। अल्लाह से डरो और मेरी अताअत इख्तियार करो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मैंने इस काम पर तुमसे कोई तनख्वाह थोड़ी मांगी है, कोई मुआवजा थोड़ी मांगा है, मेरा अजर मेरा मुआवजा तो रब्बल आलमीन के जिम्मे है। आप देख लीजिए कि असल बात क्या है कि नियत में हो खुलूस तो मंजिल है दो कदम, गालिब हो मसलहत तो हर एक मरहला तवील। तो आप पैगंबर जो है उनके सामने ऐलान कर रहा है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनको ये बात बता रहे हैं कि मैं जो तुम्हें दावत दे रहा हूं हांके पुकारे इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूं नहीं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर ये काम कर रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो तुम्हारा अपना ही फायदा होगा, क्योंकि मैं ये जो काम कर रहा हूं मैं हांके पुकारे कर रहा हूं, और इस काम को करने का मकसद क्या है कि मैं अल्लाह की रजा चाहता हूं। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। और साथ ही जो है वो पैगंबर क्या कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं कि रब्बिल आलमीन की तरफ रुजू करो, मैं रब्बिल आलमीन से मांगता हूं तो तुम भी जो है वो रब्बिल आलमीन से जो है वो मांगो। तो काफिर कौम है, मुशरिक कौम है, और उनके सामने दावत हक रख रहे हैं इस तरह कि उनके दिलों के अंदर पैवस्त हो जाए। तो बता रहे हैं कि मैं अपने मिशन को बेलौस होकर अदा कर रहा हूं, मैं तुमसे कोई अजर थोड़ी मांगता हूं, और मैं मानने वाला हूं रब्बिल आलमीन का जो सारे जहानों का रब है। फिर आप देखिए कि अब यहां पर वो तीन खास बातें जो है वो करते हैं, और जो उनकी कौम है कौम के तीन अफाल का जिक्र करते हैं। उनमें से पहला क्या है, अतबनूना बेकुल रीन आयतन ताबसून, अतबनूना बानूनिया, क्या तुम बनाते हो, क्या तुम तामीर कर डालते हो, बेकुल रीन हर री पर, ये री क्या है, रा या ऐन, ये जो है वो रियातुन की जमा है, और ऐसी जमीन जो रबवा से ऊंची हो और सख्त हो। रा या ऐन जो है हजरत मुजाहिद जो है रजी अल्लाह वो कहते हैं कि दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते को भी कहते हैं। अब आप देखें कि पहाड़ों, दो पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होगा तो पहाड़ तो पहले बुलंद होते हैं, तो गोया के बुलंद वो होगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और जमहूर मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि री बुलंद जगह है ना। तो इसी तरह री उन नबातात, री उन नबात क्या मतलब है, बढ़ने और चढ़ने वाली नबातात। नबातात क्या होती है, बुलंदी पर जाती है ना, बढ़ती है, फलती है, फूलती है, उसको भी कहते हैं। तो री उन जो है इसके मानी है ज्यादा होना, बढ़ना। तो और रियातुन जो है ये वाहिद है, इसकी जमा क्या है, रीउन, और रीउन की और जमा भी मिलती है, रुयुउन, अरियाउन, जैसे बाजू का जमा की भी जमा होती है ना, तो रीउन की भी जमा है, रुयुउन और अरियाउन। तो तुम करते क्या हो, तुम बना डालते हो, तुम बनाते हो, तुम जो है वो तामीर कर डालते हो, बेकुल री इन हर ऊंचे मकाम पर, आम जगह पर नहीं बल्कि बुलंद जगह पर, ऊंचे मकाम पर, ऊंची जमीन पर, बना डालते हो आयतन, एक यादगार। यहाँ पे क्या है, अलामत। आप देखें आयात है ना, आयतन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके मानी क्या है, अलामत के हैं। इस जगह जो है वो आयतन के मानी बुलंद महल के हैं। मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि वो ऊंची जगह पर बुलंद महल बनाते थे, बुलंद यादगार इमारतें तामीर करते थे। तो चूंकि वो फने तामीर को जानते थे, तो वो हर ऊंची जगह पर आयतन बुलंद इमारत बुलंद महल बनाते थे। और वो ये काम करते क्यों थे, ऐसा क्यों करना चाहते थे, ताबसून। अब यहां पता चल रहा है कि उनका ये फने तामीर जो था, इसका कोई फायदा नहीं था। अब बस ऐन बासा, इसके माने क्या होते हैं, फजूल है ना, बगैर किसी मकसद के। क्योंकि अबस जो है उस काम को कहते हैं जिसका हकीकतन कोई फायदा ना हो, ना उसका हुक्म मिला हुआ हो और ना ही उसका हकीकतन कोई फायदा हो। तो गोया के बेफायदा बुलंद बुलंद महलात बनाते थे, उनको जिन ऐसे महलात बनाते थे जिनको बनाने की कोई जरूरत ना थी। क्या कहा, अतबनून बिकुल्ली रीइन आयतन तबसून। तुम्हारा हाल क्या है कि हर ऊंचे मकाम पर लहासिल यादगार इमारत बना देते हो, है ना। जैसे बहुत से लोग जो हैं यादगार मकबरे ही बना देते हैं, और आप देखें कि मकबरा जो है वैसे ही पक्की कब्र बनानी नहीं चाहिए, वो किसी बादशाह की क्यों ना हो। तो रोजाए ताज महल है ना, या और इस तरह के जो हैं बड़े बड़े मकबरे और ऊंची ऊंची उसकी फिर इमारतें बनाना, ये चीजें क्या है, ये ताबसून की तारीफ में आती हैं। अब बस फजूल, कोई उनका फायदा नहीं है। इसी तरह बाज लोग जो है वो यादगार इमारतें बनाते हैं, किसी का मीनार ऊंचा बना दिया, 12 दरी तामीर कर दी, और जैसे अहरामे मिस्र है, और भी इस तरह की लोग जो है वो यादगारें जो है वो बनाते हैं। तो इन यादगारें बनाने का मकसद क्या होता है, ताबसून। कोई उसका फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बल्कि अब शोहरत है, या फिर नमूदो नमाइश है, या फिर ये कि लोग वाह वाह करें, है ना। तो ताबसून से पता चलता है कि ऊंची इमारतें वो बनाते थे, यानी ताबसून से पता चलता है कि ऊंची इमारतें जो बनाते थे उसका मकसद क्या था। अच्छा, दूसरा उनका काम क्या था, वतत्तखिज़ूना मसानिया लअल्लकुम तख़लुदून। ये दूसरा उनका फेल भी ये फने तामीर से ताल्लुक रखता था। फने तामीर में इस कौम की नजीर कोई और नहीं थी, बेमिसाल कौम थी, बेमिसल कौम थी। अब आप देखें कि अब इतना ही काफी है जो आयत 128 में कह दिया कि ऊंचे मकाम पर फजूल इमारतें बना डालते हो, लेकिन क्योंकि अल कुरान उनके इस अमल को पसंद नहीं कर रहा, इसलिए जो है अब सख्त जो है वो नकीर की जा रही है, मना किया जा रहा है। वतत्तखिज़ूना, और आप देखें कि यहां पे शद आई है ना, और बना डालते हो। मसानिया, मसानिया जो है मसनातुन की जो है ये जमा है, मसनातुन की जमा मसनाउन भी है, और मसानिया जो है वो मसनाउन की जमा है। और मसानिया यहाँ पे क्या है, जमा है और ज़र्फ़े मकान है, जैसे रहने की जगह। तो अब आप देखें कि ये कहते किसको हैं मसाने, ये किसको कहते हैं। तो ये स्वाद नून ऐन से है, और इसके मानी क्या होते हैं, सनत के लिए ही आता है, किसी जो है वो चीज को बनाने के लिए आता है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां इससे मुराद जो है वो मसाने से मुराद क्या है, कले भी हैं, कले और गड़ियां नहीं होती मजबूत जो बनाई जाती हैं, इसी तरह इससे मुराद महल भी हैं, और इससे मुराद जो है वो इमारतें हैं, और यानी ऐसी इमारतें ऐसे महल जो बड़े मजबूत हों और बुलंद हों। तो लअल्लकुम, लअल्ला जो है, लअल्ला जो है, इमाम बुखारी जो है वो कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी की ये रवायत है, वो कहते हैं लअल्ला यहाँ पे तशबीह के लिए आया है। तो अगर तशबीह के लिए आए तो इसके मानी क्या होते हैं, कि لعلہ جو ہے یعنی شاید کے معنی یہاں پہ نہیں دے رہے بلکہ کیا ہے گویا کہ تمہیں رہنا ہے. لعلہ کے معنی یہاں پہ کیا ہے گویا کہ تم کو رہنا ہے تخلدون ہمیشہ. ان کی جو تھی وہ اس قوم کی جو تھی وہ عمریں کافی زیادہ تھی, جسمانی مضبوطی بھی تھی توانائی بھی تھی, اب لمبی لمبی عمریں. تو اب وہ کیا کرتے تھے بے شک ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ کتنا بھی جیو گے کتنے بھی مضبوط محل بناؤ گے لعلکم تخلدون گویا کہ تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے کبھی تم مرو گے ہی نہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کأنکم تخلدون یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں گویا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا کہ تم جو ہے وہ اس میں ہمیشہ رہو گے. تو اصل بات کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں موت ہی نہیں آنی اور تم نے جو ہے وہ مرنا ہی نہیں ہے تو تم جو ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والے ہو. تو یہاں پر بھی جو اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نہ تمہارے محلات کو فنا ملے گا یعنی نہ وہ فانی ہے نہ تم فانی ہو تم ہمیشہ رہو گے. اچھا تیسرا ان کا عمل کیا تھا وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جب بارین اور جب تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو پکڑتے ہو کسی کو اور جب تم پکڑتے ہو کسی کو جب بارین جب بار بن کر پکڑتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ بتشتم کافی ہے با تو شین جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کسی کی سخت گرفت کوئی کسی کو جو ہے وہ پکڑے تو مضبوطی سے پکڑے کوئی غالب ہو اور وہ اپنی قوت کے ساتھ اپنی سولت کے ساتھ اور اپنی حاکمیت کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں فساد پیدا کرے حملہ کرے کسی پر ٹوٹ پڑے. اور بدشاہ ایسی گرفت کو کہتے ہیں جس میں رحم نہ ہو. تو کیا ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ اور دو دفعہ یہ صیغہ استعمال ہوا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے کہ تم جو ہے جب پکڑتے ہو جب کسی کو پکڑتے ہو اس پر ہاتھ ڈالتے ہو اس کی گرفت کرتے ہو جبارین اور اب یہ بھی مبالغے کے لیے ہے جبارین جبار کی جمع ہے تو تم جو ہے جبار بن جاتے ہو گویا کہ تمہیں اپنا صرف معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے اسی میں تم جو ہے وہ مبالغے سے کام لے رہے ہو. تمہیں ایک ہی کام ہے کہ مکان اونچے ہونے چاہیے اونچے اونچے بڑے بڑے اور تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ معیار انسانیت گرتا جا رہا ہے. تو معیار انسانیت کا حال کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں غریبوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے تم غالب ہو تم حاکم ہو تو محکوموں کے لیے مغلوبین کے لیے تمہارے اندر کوئی رحم نہیں ہے تم انصاف نہیں کرتے جو ضعیف کمزور غریب گرے پڑے لوگ ہیں جو پس طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تمہارے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ تو گویا کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں تمہاری سرگرمیاں ہیں تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ تم جبار ہو اور اللہ کی زمین میں فساد کرتے ہو. تو آپ دیکھیے کہ ان کے تین فعل تھے جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں کہ یہ تمہارے کیسے عمل ہیں کہ فن تعمیر میں مہارت ہے یادگار محل بناتے ہو گڑیاں قلعے رہائشی گھر اونچے اونچے خوبصورت بناتے ہو اور جو ہے وہ بس یہی تمہاری زندگی کا کام ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بھی تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بس گھر بنانے کا بہت شوق ہے اور کئی گھر بنا رہے ہیں ایک امریکہ میں ہونا چاہیے اور ایک مری میں ہونا چاہیے جب ہم گرمیوں میں وہاں پہ جائیں گے ایک کراچی میں ہونا چاہیے ایک لاہور میں ہونا چاہیے ہے نا. تو گھر بناتے ہیں اور سامان سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نہ سامان کھولنے کی جو ہے وہ مہلت ملتی ہے نہ توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ جا کر رہنے کی بھی ہوتی ہے. تھوڑے دن بھی جا کے رہنے اپنا تو گھر ہونا چاہیے نا. پھر میں جاتی ہوں پھر میں اپنا گھر کھولتی ہوں پھر میں وہاں پہ اپنے گھر میں ایک دعوت کرتی ہوں پھر اس طرح لوگوں کو پتا چلتا ہے اور پھر چیزیں اس میں ساری باہر کی ہوتی ہے تو ایک ہی غم لگا ہوا ہے نا. पहले उस घर को बनाने का, घर पता नहीं फराइज अदा किए कि नहीं, हज किया कि नहीं, और रिश्तेदारों के हकूक, अल्लाह के हकूक, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कहां कितनी डंडी मारी। फिर उसके बाद ये कि जो है वो फिर उसको घर को सजाना, बनाना पहले, फिर सजाना, फिर दिखाना, फिर दिखाने में और सजाने में दूसरों पर फख्र करना, तकासुर, ये बीमारी जो है वो पाई जाती है। और आप देख लीजिए कि यहां इन आयतों से क्या पता चलता है, बिला जरूरत घर इमारतें बनाना, ये इसकी अल्लाह ताला ने मुजम्मत की है, बिला जरूरत और ऐसे घर और घरों के अंदर ऐसी चीजें और ऐसी तामीर के जिसमें दिखावा मकसूद हो, ऊंचे ऊंचे बनाना या दूसरों पर, दूसरों के घरों की निस्बत हमारे इतने अच्छे हों कि लोग वाह वाह कर जाएं, वाकई पता चले लोगों को कि कोई बाहर रहता है ना, बाहर का पैसा है, डॉलर है, दिरहम है, दिनार है। तो आप देख लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जो है वो हदीस मिलती है जिसे हजरत अंस रजी अल्लाह जिसके रावी हैं और ये तिर्मिजी की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नफाकतु कुल्लुहा फी सबीलिल्लाही इल्लल बिनाई फला खैर फी, वो इमारत जो जरूरत से जायद बनाई गई हो इसमें कोई बेहतरी और भलाई नहीं है। आप देख लीजिए कि अगर इमारत हमने बनाई है उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत से बढ़कर है, जायद है, तो फिर इसमें आपने फरमाया कोई बेहतरी और भलाई नहीं है। इसी तरह हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु की एक और रवायत भी है, ये अबू दाऊद ने इसको रवायत किया है, आपने फरमाया इन्ना कुल्लू बिनाई वबालुन, हर तामीर जो है वो वबाल है साहिब तामीर के लिए, हर हर इमारत बनाने वाले के लिए वबाल है, मुसीबत है। और इल्ला माला यानी इल्ला माला बुद्धा मिन्हु, इसके मानी ये हैं कि वो इमारत जो कि जरूरी हो वो वबाल नहीं है, हाँ, सवाए उसके जो जरूरी हो जिसके बगैर गुजारा ना हो तो वो वबाल नहीं है। तो बगैर किसी सही गरज के बुलंद इमारत बनाना, ऊंची ऊंची बनाना, ज्यादा बनाना, और ये क्या है, ये हमारी शरीयत में भी बुरी हैं, इनकी मजम्मत की गई है और ये नाजायज हैं। तो आप देख लीजिए हम सबको अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। बाज लोगों को बड़े बड़े घर बनाने का, बड़े बड़े घर लेने का शौक होता है और कितने कमरे ऐसे होते हैं कि कभी खुलते ही नहीं है, और इतने बड़े बड़े घरों की सफाई सजावट में ही वक्त गुजार देते हैं कि फर्ज नमाजें कजा होने लगती हैं, थक जाते हैं, अपने आप को हलकान कर लेते हैं उन्हीं के पीछे भागते भागते। और आप एक बात याद रखिएगा, मैं अपने आप को भी ये बात हमेशा कहती हूँ कि मैं भी इस बात को याद रखूं कि घर एक कमरे का हो तो भी गुजारा होता है, फिर चलो जरूरत है तो दो का ले लिया और जरूरत है तीन का ले लिया, और आप बढ़ाते चले जाएं चार का, पांच का, छह का, वो भी आतंक बढ़ जाता है, वो भी कम पड़ जाता है, और फिर दिल ये कहता है कि हल में मजीद और बड़ा हो सकता है क्योंकि मेरी जरूरतों को पूरी नहीं करा। तो ये जो नफ्स है ना, इसकी एक ख्वाहिश पूरी करो तो ये दूसरी के लिए टांग फैलाता है, पांव फिसारता है, आप दूसरी पूरी करेंगे तो तीसरी के लिए फिसारेगा, इसका कोई एंड नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो बाज लोगों को कपड़े जमा करने का शौक है ना, टाइयां जमा करने का शौक है, 40-50 टाइयां हैं, है ना, और 40-50 शर्टें हैं, और उसके बाद ये कि मेरे मुझे शर्ट लेनी है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, अलमारी में जगह नहीं है, पहनने की फुर्सत नहीं है, और पता नहीं है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, तो अल्लाह इनका हिसाब तो लेगा ना। इसी तरह बाज लोगों को जूते जमा करने का बहुत शौक है। एक औरत कहने लगी कि मेरी वालदा को जूते जमा करने का बड़ा शौक था, खूबसूरत बेहतरीन जूते, और जो है वो फिर बूढ़ी हो गई, फिर बीमार हो गई, फिर आखिरी वक्त था जूतों को याद करती थी। और जिन चीजों को आप जमा करते हैं ना बड़े शौक से, बड़ी मोहब्बत से, फिर आप उनको याद बहुत करते हैं। तो क्या चीजें फिर हम जमा करें, नेकियों को जमा करें, अमले सवाले। वैसे भी ये जुलहज का महीना है, इसके पहले दिन है, इब्तदाई दिन है, और आपको पता है अशरा जुलहज की इबादत जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी मकबूल है, अल्लाह को बड़ी पसंद है, है ना। अशरा जुलहज के दिनों की नेकियां, अमल उन सवाले अल्लाह को इतने पसंद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और कोई अमल नहीं, और सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, तो आपने फरमाया कि नहीं, इल्ला ये कि जिहाद पर जाने वाला जो है जब वो वापिस यानी वो कुछ भी लेकर वापिस ना आए, खुद शहीद हो जाए और माल उसका सारा खत्म हो जाए, बस तो वो उसके बराबर अजर पा सकता है, वरना नहीं। यानी इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना, तो और वैसे भी ये जो रोजों में नेकियां की जाएं या अशराए ज़ुलहज में की जाएं, तो दरअसल ये ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट ट्रेनिंग, फिर जिसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, के एक महीने की ट्रेनिंग रमजान की तो 11 महीने उसके असरात नजर आने चाहिए, फिर अभी थोड़े दिन रोजों के गुजरने के बाद थोड़े ही दिन गुजरे हैं, फिर अशराए ज़ुलहज, हज का महीना, इबादत का महीना, ताकि फिर हमारी और ऑलिंग हो जाए, फिर से हमारी सफाई हो जाए, है ना, दिल के अंदर जो कीना कदूरत मुनाफकत हसद आ गया उसकी भी सफाई हो जाए, और जो जाले लगे हैं दिल में वो भी उतार लिए जाए, दुनिया की मोहब्बत के हैं या जो है वो किसी और चीज के हैं। तो बहरहाल आप देख लें कि ऐसी ही इमारतें बनाना तो ये क्या है, फजूल है। और दो बातें तो उनकी फने तामीर से मुतलिक थी, और कहते हैं वलीद ये बनू उमैया का बादशाह था, इसको बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का बड़ा शौक था। और एक बादशाह था बनू उमैया का सुलेमान, उसको ना वो औरतों का बड़ा दिलदादा था, औरतों का बड़ा शौकीन था, है ना, तो कोई औरतों का होता है, कोई इमारतों का होता है, किसी को कुत्तों का शौक होता है, किसी को जूतों का शौक होता है, किसी को फर्नीचर का, किसी को कपड़ों का। लेकिन कहते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह जो है वो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह, फिर आप देखें अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और भी ऐसे जो नेक नेक लोग थे, जब यानी इनका जब दौर आया ना, और भी जो सलफ सालहीन थे नेक थे, तो लोगों में नेकियों का शौक पैदा हो गया। तो नेकियों को आम करें, इल्म को आम करें, सदकात खैरात, लोगों को माफ कर देना। तो असल बात यह है कि जैसे दोस्त होते हैं, जैसी सोहबत होती है, लोग भी फिर वैसे ही काम करने लगते हैं ना। तो हमें क्या करना है, नेकियों का शौक पैदा करना है। और ये जो है ना कि लोगों के पर जुल्म और सितम करना, इसको भी अल्लाह ताला ने जो है वो यहाँ पे इसको इसकी नकीर की है, इसको कंडम किया है, बड़ी सख्ती के साथ किया है कि तुम जो है वो जमीन में फसाद करते हो। तो बस तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। तो हूद अलैहिस्सलाम की तकरीर में कितनी दफा तकवा आ गया, 3 दफा आ गया। शुरू में भी शिर्क को छोड़कर तकवा इख्तियार करो, फिर जो है मैं जो बात कर रहा हूं सही बात कर रहा हूं, ईमानदार हूं, फिर कहा कि जो है वो तकवा इख्तियार करो, मेरी बात मान लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात। फिर तीसरी बात कि कैसे काम करते हो, क्या है तुम्हारा जो है वो जिंदगी का मकसद, है ना, तो फिर कहा कि तुम जो है वो तकवा इख्तियार करो, है ना। और अब देखें कि फत्तकुल्लाह वाती, उनके बाद चौथी दफा फिर आयत की इब्तदा जो है वो तकवा से हो रही है, वत्तकुल्लजी, और डरो उस अल्लाह से, डरो उस रब से, अतात करो उस रब की, अमद्दकुम बिमा तालमून, कि उस रब ने अमद्दकुम, अमद्दकुम के मानी ये हैं कि वो रब जिसने तुम्हें जो है वो नवाजा है, वो रब जिसने तुम्हें जो है वो दिया है। अमद्दकुम जो है इसके मानी क्या है, वैसे तो मीम दाल दाल के मानी क्या होते हैं, मदद करना, फैलाना, लंबा करना, तो इससे मुराद क्या है कि वो रब जिसने तुम्हें जो है वो दिया है, वो रब जिसने तुम्हें जो है वो नवाजा है। तो एक तरफ तुम्हारा किरदार और बुरा इखलाक है, तुम जाबिर और जालिम हो, और ये बुरा इखलाक जो है ये ईमान और अतात की रास्ते में रुकावट बनता है। और दूसरी तरफ देखो कि अल्लाह की अनायतें, कि वो रब जिसने तुम्हारी इमदाद की है, तुम्हें नवाजा है, बड़ा दिया है, और क्या नवाजा है, बिमा तालमून, तुम इल्म रखते हो, तुम्हें खूब पता है, तुम जानते हो अपने रब को कि तुम्हें दे रहा है, और क्या क्या दे रहा है, क्या क्या दिया। अमदकुम भी अनआमे हुआ बनीन, उसने तुम्हारी मदद की मवेशियों से, जानवरों से। तुम्हें उस रब ने गाय भी दी, बैल भी दिए, बकरी, भेड़, हर तरह के मवेशी जो है उसने तुम्हें उनसे जो है वो नवाज दिया। तो अल्लाह के, अल्लाह की नेमतों पर गौर करो कि उस रब ने तुम्हें इतना माल दिया, इतना तुम्हें नवाजा। वह बनीन, बनीन जो है यहाँ पे खास तौर पर जो है वो बेटों का जिक्र आया है। तो कौमें और लोग और कबीले बेटों पर हमेशा बड़ा फखर करते रहे। तो एक मानी क्या है कि तुम्हें अल्लाह ने बेटों से नवाजा, बड़ा तुम्हें दिया। दूसरे मानी क्या है कि तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी। तो बनीन बेटों के लिए भी आता है और बनीन से मुराद औलाद भी होती है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो औलाद से नवाजा। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तुम पर करम नवाजी है, ये अल्लाह ताला की तुम पर जो है वो नवाजिशें हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माल भी दिया और फिर औलाद भी। क्योंकि बाज़ुकात ये होता है माल तो हो और औलाद ही ना हो, है ना। तो क्या होता है कि घरों में लड़ाइयां झगड़े ही होते रहते हैं। तो फिर तीसरी बात ये कि वजन्नातिन, और तुम्हें उसने बागात से नवाजा, तुम्हें उसने जो है वो बाग दिए, है ना। और आप देखें कि मवेशी हैं, औलाद हैं, और फिर उसके साथ बागात भी हों, तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी खूबसूरत बात है कि बागात से भी अल्लाह ताला ने नवाजा। वह उयून, आयन की जमा है, और मानी क्या है, और चश्मे दिए। अब देखें कि एक तरफ जो है वो मवेशी चल फिर रहे हैं और उनकी एक रौनक है, सुबह के वक्त मवेशियों का जाना, शाम के वक्त आना, वो एक तिजारत है, वो एक बिजनेस है। और दूसरी तरफ बागात हैं मवेशियों के चरने के लिए, फिर औलाद है तो बच्चों के खेलने के लिए, और उसके साथ जो है फिर चश्मे भी हैं, फिर पानी भी है ना। तो महल्लात जो थे वो बना रहे थे, तो सर छुपाने के लिए तो झोंपड़ी भी काफी होती है, रहने के लिए तो आम घर भी काफी होते हैं, मजबूत हों कि इंसान जो है वो उसमें रह सके। लेकिन ऐसे मजबूत मजबूत बनाना और ऐसे बड़े बड़े बनाना कि जो है वो तमाम वसाइल उसके अंदर जो है वो लगा दिए जाएं, तो ये चीज जो है ना ये अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है। वजन्नातिन वअयून, और आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो नेमतों से नवाजा है, इसमें चार का खास तौर पे यहाँ पे जिक्र किया। जानवर, तो हो सकता है कि उनकी जो है वो जो कुछ भी वो काम करते थे, तो उनका जानवर जो थे वो बहुत ज्यादा मवेशी, जैसे तिजारत के साथ साथ क्या है कि आप ज़रात का काम जो है वो करें, क्योंकि साथ ही जन्नात जो है बागात का भी जिक्र है, फिर औलाद भी है, फिर चश्मे भी हैं। तो जमीनों को सैराब करने के लिए, पीने के लिए पानी, जमीनों को सैराब करने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, है ना, और घर बनाने के लिए, तो खूब अल्लाह ताला ने उनको दिया था। तो ये इन इनामात का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मुझे ये खौफ है, मैं डरता हूँ अलैकुम तुम्हारे बारे में कि तुम पर कहीं अज़ाब यौमिन अज़ीम ना आ जाए। तो यौमिन अज़ीम, बड़े दिन का अजाब जो है वो तुम पर आ ना जाए। तो तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे अमलों से मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं बड़े दिन से मुराद हौलनाक दिन का अजाब तुम पर आ ना जाए। तो उनको क्यों ऐसा महसूस होता था कि तुम पर जो है वह अजाब यौमिन अजीम ना आ जाए, इसलिए कि इतनी नेमतें पाकर वो कौम नशुक्री कर रही थी, वो कौम जब्बार बनकर जी रही थी, बतश तुम जब्बारीन थी, और वो अपना वक्त, अपने वसाइल, अपनी कुवतें और सलाहियतें जो थी वो घर बनाने पर जो थी वो खर्च कर रही थी। और अल्लाह ताला ने ये चीजें तो उनको दुनिया के अंदर जो दी थी बतौर इम्तहान दी थी, ना के बतौर इस्तेहकाक दी थी, है ना, उनका हक थोड़ी था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको बतौर इनाम के दी थी। पालू वो बोले सवाउन अलैना, हमारे लिए बराबर है हम पर, अवा अस्ता के तू नसीहत करे। अस्ता क्या इसके मानी है, हाँ, अस्ता कि तू नसीहत करे, वाज से है कि तू नसीहत करे, तू वाज करे, ता यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लिए है, अम लम या नहीं, तकुन तू हो मिनल वाइजी नसीहत करने वालों में से। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तुम नसीहत करो और चाहो तुम नसीहत ना करो, हमारे नजदीक दोनों बातें बराबर हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अगर आप आयात जो हैं वो 134 तक देखें तो उनको तरगीब दिलाई है कि क्या क्या नेमतें हैं अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, तो तुम अल्लाह की बंदगी करो, ठीक है ना, तो उनको तरगीब दिला रहे हैं। और इसके बाद अगर आप गौर करें तो फिर क्या करते हैं कि उनको अजाब से भी डराते हैं, है ना, तरहीब भी है कि उनको डरा भी रहे हैं। और आप देखें कि उस कौम का रवैया कैसा था, वो कौम जो थी वो कैसी सरकिश थी, बजाय इसके कि अपने रवैये को तब्दील करती, उल्टा जो है तलखी से जवाब देती है, बद तहजीबी से जवाब देती है, है ना, और जो है कहती है कि मर्जी है तुम्हारी, चाहो डराओ चाहे नहीं डराओ, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। इन हाजा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इन हाजा और कुछ भी नहीं है इल्ला मगर खुलुकुल अव्वलीन, ये बातें जो हैं हैं अगले लोगों की, ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं। अब आप देख लें कि अब जो है यहां पे लफ्ज आया है खुलुक का, खुलुक जो है ये जमा है अखलाक की, और इसके दो मानी हैं। अगर अगर इसको जो है वो खा जो है इस पर फतहा ली जाए, जबर ली जाए, तो इसके मानी है कि पहले लोगों की घड़ी हुई बातें। तो अब जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो हम कुछ कर रहे हैं तो हम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, ये अव्वलीन अव्वल की जमा है कि जो पहले लोग हैं वो भी यही करते रहे हैं, तो ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो अमल हम कर रहे हैं, ये पहले लोगों की घड़ी हुई बातें हैं, है ना। तो और ये भी उनका मतलब था कि आप जो बातें सुनाते हैं ये खुद आपकी बनाई हुई बातें हैं जिन्हें आपने गुज़िश्ता जमाने की किताबों से अखज कर लिया है। तो वो क्या कहते हैं कि ये बातें तो यूं ही होती चली आ रही हैं। तो एक इसके मानी यहां पे क्या है कि जो बातें हम कर रहे हैं यानी घर बनाना, ऊंचे ऊंचे घर बनाना और हमारे इखलाक हमारे मामला, तो हमको ये नई बात थोड़ी कर रहे हैं, हमारे बाप दादा यही करते रहे। और इसी के दूसरे मानी क्या है कि तुम जो बातें कर रहे हो ये इखलाक की बातें और ये मजहब की बातें और ये जो तौहीद की बातें, तो पहले भी दुनिया में गाड़ी चलती रही है, ऐसे ही हमारे बाप दादा करते रहे, तो तुम्हारी बातें भी होती रही और हमारे काम भी होते रहे। तो एक मानी खलक के क्या है, ये पहले लोगों की घड़ी हुई बातें हैं। क्या मतलब, हमारे बाप दादा ने जो बातें की वही हम कर रहे हैं और जो पहले पैगम्बरों ने बातें की वही तुम कर रहे हो, ठीक है। एक मानी तो ये है। दूसरे मानी खुलुक, खा पर पेश है, रफा है, दमा है, कहते हैं खुलुक जो है ना इससे मुराद दीन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलुक से मुराद जो है वो दीन लिया है कि वो ये कहने लगे कि हम लोग जिस दीन पर हैं ये हमारे अबाओ अजदाद और बुजुर्गों का दीन है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे इस पर मजबूती से कायम रहेंगे, ठीक है। तो एक तरफ कहने लगे कि तुम करो वाज और नसीहत करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा जवाब क्या था, इन हाजा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, कि ये बातें तो यूं ही होती चली आई यानी बाप दादा के जमाने से यही होती रही, उनका यही दीन था, उनका यही अमल था, उस जमाने में पैगंबर यही बात करते रहे जो आप आज तुम कर रहे हो और हम भी वही करते चले आएंगे। तो गोया के बाप दादा की अंधी तकलीद जो थी ना उसका उन्होंने जवाब दिया उसके बारे में कहा और कहने लगे वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और हम अजाब में मुब्तिला होने वाले नहीं हैं। अब आप देख लीजिए कि अब यहां पर जो है वो क्या कहते हैं हर जमाने में हर नबी ने अजाब से डराया है, वो लोगों को यूं ही डराता रहा, और तुम भी हमें डरा रहे हो तो हम पे कोई नहीं अजाब आने वाला। और यहाँ पे आप देखें मुअज्जबीन, मुअज्जब की जमा है मुअज्जबीन, तो हम पर कोई नहीं अजाब आने वाला, ये बस ऐसी ही बात है। फकज़बू, फिर उन सब ने पैगंबर को झुटला दिया। हु की जमीर कौन से पैगंबर की तरफ है? हूद अलैहिस्सलाम की तरफ। फाहलक ना हम, फिर हमने उनको जो है वो हिलाक कर दिया, हमने उनको तबाह कर दिया। इन नफी जालिका लाया, बेशक इसमें एक निशानी है, इसमें एक इबरत है। वमा कान अक्सर हूं मुमिनीन, और नहीं थे अक्सर उनमें से ईमान लाने वाले, अक्सर लोग मानने वाले नहीं थे। وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, और हकीकत ये है कि तेरा रब अजीज है और रहीम है, जबरदस्त है, गालिब है। किस चीज पर जबरदस्त है? अजाब देने पर, उस पर भी वो कुदरत रखता है। और उसके साथ अगर उसने मोहलत दी हुई है तो वो रहीम है, अगर तुम गलतियों जो है उस पर माफी मांगो तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो माफ कर देगा। तो आप देख लीजिए कि अब अल्लाह ताला जो है वो ये बात बता रहे हैं कि ये कौम जो थी ये बाज ना आई, इसने इबरत हासिल ना की, और पैगंबर के झुटलाने पर अड़ी रही, उस पर बजिद रही, पैगंबर इनको झुंझोड़ता रहा और ये लोग जो थे वो झुटलाते रहे। और जो कौमें भी झुटलाती हैं तो फिर उनका अंजाम क्या होता है? फाहलक ना हूं, ये जो मौजूदा अमान और यमन के दरमियान का इलाका है ना, वो इस कौम का इलाका था। और जो है वो इस कौम ने जो है वो खुद से कहा कि हम पर कोई अजाब जो है वो आने वाला नहीं है। तो और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि सूरत अहकाफ में इन्होंने मुतालबा किया पैगंबर से, फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो वो अजाब ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है। फिर इन पर अजाब आया, फाहलकना हम, उनको हिलाक कर दिया। कैसे? अल्लाह ताला सूरत हाका में कहते हैं आयत नंबर 7 में, सखरहा अलैहिम सब अलयालिम व समानियत अय्यामिन हुसूमा, अल्लाह ने उनको 7 रात और 8 दिन लगातार उन पर चलाए रखा। क्या अल्लाह ताला ने चलाए रखा? एक आंधी थी, मुसलसल एक आंधी थी जो इन पर चल रही थी। तो एक कॉल ये है कि आंधी चलनी शुरू हुई बुध के दिन, दूसरा कॉल ये है कि ये आंधी चलनी हुई जुमे के दिन। तो जब ये अजाब इन पर आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि इनका हाल क्या था, फातर अल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अजाज नखल खाविया, अगर आप देखें तो तू लोगों को इसमें इस तरह गिरे मरे पड़े देखेगा जैसे खजूरों के खोखले तने हो। अब आप देख लीजिए कि खजूरों के दरख्तों के ऐसे तनों से इस कौम को जो है वो अल्लाह ताला ने तशबीह दी कि जिनके सर अलग हो चुके हैं, है ना। तो जब इस कौम ने ये कहा कि हम पे अजाब कोई नहीं आने वाला और हम अपना आबाई दीन नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई नहीं मरना, तौहीद का इनकार, रसूल का इनकार, आखरत का इनकार, तो अल्लाह ताला जो है क्या कहते हैं कि वो कौम दुनिया की मजबूत तरीन कौम और कवी कौम, लंबे कद वाली, मजबूत जिस्म वाली, और ऐसी उसके अंदर ताकत, कुवत, शिद्दत और जबरूत उनके अंदर था कि वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुवा, कौन है हम में ताकत में ज्यादा, कोई है हम में? जैसे आज भी कोई सुपर ताकत ये कहे, जैसे रशिया ने भी कहा था तो क्या हुआ, ये पाश पाश हो गया खुद ही, है ना। तो असल सुपर ताकत तो अल्लाह ताला की जात है। अब जो आप देखिए कि कैसे हुआ कि इन पर मुकम्मल 7 रातें और 8 दिन अजाब इन पर रहा। कहते हैं कि बादे तुंद तेज हवा ऐसे आती थी कि आदमी को उठाती थी हवा में, फिजा में बुलंदी पे ले जाती थी, फिर जोर से सर के बल जमीन पर पटक देती थी, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे घर बनाते थे, ऊंचे ऊंचे इनके कद थे, लंबे कद थे, और इनके सरों के अंदर गुरूर और किबर पाया जाता था, फिर जोर से सर के बल जमीन पर पटक देती, जिससे इसका दिमाग फट जाता और टूट जाता और बगैर सर के इनकी लाशें इस तरह जमीन पर पड़े हुए होते गोया कि वो खजूर के खोखले तने हैं। जैसे दिमाग जब फट जाए तो अंदर से निकल जाए भेजा भी है ना, तो खजूर का दरख्त अंदर से खाली हो। और बाज मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि इन्होंने पहाड़ों में, गारों में, खोह में बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाई हुई थी, बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाई हुई थी अंदर से खोद खोद कर। तो जैसे अंदर से पहाड़ खोखले थे लेकिन बड़े बड़े महल थे, इनके सर इनके जिस्म खोखले हो गए। इन्होंने पीने के लिए गहरे कुएं खोद रखे थे चूंकि मजबूत थी, बगात की इनके पास बड़ी कसरत थी। जब अल्लाह का अजाब आया तो कोई चीज इनके काम ना आई और इन्हें सफाई हस्ती से मिटा कर रख दिया गया। और इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में सूरत कमर में भी कहते हैं, इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौम नासिम मुस्तमिर तंजुन नास कन्नहुम आजाज नखल मुनक़िर। तो ये था मुसलसल अजाब जो इन पर भेजा गया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मदद मशरकी हवा के जरिए की गई, बादे सबा के जरिए, यानी मशरकी हवा, और आद को दबूर मगरबी हवा के जरिए तबाह कर दिया गया। जो मशरकी हवा होती है ना, वो क्या होती है, मशरकी हवा जो होती है उसकी वजह से बादल आते हैं, दरख्तों में फल लगता है और वो खैर लेकर आती है ना। मशरकी जो हवा होती है वो यकतरफा नहीं होती, लेकिन ये हवा जो इन पर चली ये यकतरफा थी, अकेली थी, ना इस हवा से बादल आए ना दरख्तों में फल फूल लगे, और क्या हुआ, बांझ थी ये हवा, कोई फायदा इनको ना मिला और टूटी फूटी तबाह हाल थी। और फिर इनको भी तबाह हाल करके जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रख दिया। अच्छा, इससे हमारे लिए अमल के लिए उसूल क्या निकलता है ना, हम सबको जो है वो क्या करना है, अपना मुहासबा करना है ना। बार बार अल्लाह ताला आयाते जो है वो कौन सी आयात को भेज रहे हैं, आयाते तरजीह। तो पहला अमल का ये उसूल निकलता है हमारे लिए कि हम जो है तौहीद, आखरत और रिसालत का इनकार ना करें, है ना। अहले मक्का के लिए भी ये इबरत थी और हमारे लिए भी। तो हम क्या करें, अकायद अपने दुरुस्त करें। दूसरा असूल ये निकलता है कि अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद जो है ना उसको छोड़ दें, क्योंकि उसका अंजाम बड़ा खौफनाक है। और तीसरा असूल ये निकलता है कि अगर हम जैसे देखें कि जोर की हवा चल रही है तो हम आंधी को जब देखें तो उससे इबरत हासिल करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ना कहती हैं कि जब तेज हवा चलती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलूका खैरहा व खैरा मा फीहा, अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई मांगता हूं और जो कुछ इसमें है और जो खैर इसके अंदर है, व खैरा मा उर्सिलत बिही, और जो कुछ देकर वो भेजी गई है मैं इसकी भलाई मांगता हूं। फिर इसके साथ ही आप कहते हैं, वाऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्री मा फीहा व शर्री मा उर्सिलत बिही, और मैं इसके शर से तेरी पनाह में आता हूं और जो कुछ इसमें है और जो कुछ वो देकर भेजी गई है इसके शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। फिर इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आसमान पर बादल छा जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो था वो बदल जाता, मुतगैर हो जाता। आप कभी बाहर तशरीफ ले जाते और कभी अंदर तशरीफ लाते, बड़े परेशान होते, कभी आते कभी जाते। जब बारिश नाजिल हो जाती तो आपकी परेशानी दूर हो जाती। और आपकी ये कैफियत जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ने महसूस की तो आपसे पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा शायद ये वही सूरत हाल हो जैसे कौम आद ने कहा था। कौम आद ने क्या कहा था, फलम्मा रहु आरदम मुस्तकबिला औदियातिहिम कालू हाजा आरदम मुमतिरुना, जब उन्होंने अजाब को बादल की तरह अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखा, यानी बादल बनकर वो आ रहा था ना अजाब, तो बोले ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। और फिर हुआ क्या कि बादलों के अंदर तो उनके लिए अजाब छुपा हुआ था, और वो कौम जो थी वो बादल देखकर जो थी वो खुश हो रही थी। तो इससे जो है फिर अमल का क्या उसूल निकलता है कि हमें मयारे इंसानियत बनाने की फिक्र करनी चाहिए, ना कि जो है वो हम मयारे जिंदगी को बुलंद करने की फिक्र में डूबे हुए हैं, है ना। उसी में हम सब जो है वो मसरूफ हैं, तो हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा एक अमल का उसूल ये भी है कि मयाना रवि और एतदाल का दर्स देता है इस्लाम हमको। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या पैगाम देते हैं कि कौम के पास फलों से लदे हुए बागात, उसमें जारी चश्मे थे, लहलहाती खेतियां, अल्लाह ताला ने माल के साथ औलाद से नवाजा, मजबूत कवि बनाया, लंबे कद उनको दिए। अब जब नेमतों की फरावानी हुई तो उनको शुक्र करना चाहिए था, लेकिन वो ऐशो इशरत में डूब गए और बुलंद और बाला इमारतें बनाने लगे पहाड़ों को तराश तराश कर। ऐसे नहीं कि ऐसी जैसे आप सोचें कि फर्नीचर भी होता है तराश तराश कर बनाया हुआ, और आसान नहीं होता लकड़ी को तराश कर खूबसूरत बनाना। इसी तरह पहाड़ों को, मजबूत पहाड़, उनको तराश कर खूबसूरत बनाना आसान नहीं होता, है ना। एक तो यही है ना कि ईंटें गारा मट्टी को जमा किया और घर बना लिया, नहीं। तो अब क्या करते थे फिर इसके बाद, वो फखर करते थे, जो बनाते थे ना उस पर फखर करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को याद रखना चाहिए कि असराफ और तकब्बुर से हम बचते हुए क्या बात आपने फरमाई, जो चाहो खाओ पियो पहनो और सदका करो। तो हमारे अंदर मियाना रवि होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, असराफ नहीं होना चाहिए और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि जुर्रत ईमानी होनी चाहिए कि हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनसे डरते नहीं हैं और उनको पैगाम तौहीद का देते चले जाते हैं। फिर इस तरह एक अमल का हमें उसूल ये भी मिलता है, सूरत हूद में आप पढ़ चुकी, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, कि अल्लाह पर वो तवक्कुल करते हैं और साथ ही क्या कहते हैं, इस्तग़फिरू रब्बकुम, या कौमी ए मेरी कौम के लोगो इस्तग़फिरू रब्बकुम, कि तौबा इस्तग़फार, तो हम भी तौबा इस्तग़फार करें। तो इससे क्या है, गुनाह माफ होंगे, रिस्क में तरक्की होगी और उसके साथ कुर्ब इलाही के हुसूल का ये अहम जरिया है। तो बार बार जब अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन, तो हमें अल्लाह इन अक्सर में शामिल ना करे, व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और अल्लाह ताला जो है वो गालिब भी है और रहम करने वाला भी है। कहते हैं कि ये कौम जिस पर ये अजाब आया, तो 1988 में ये जो कौम जी थी इनके जो पहाड़ थे ये खंडर बन गए, सहरा बन गए। तो सहरा की रेत जब ली गई तो उसके अंदर जो थी वो 35% जो थी वो मोहलिक जहर था, यानी इतना ज्यादा उसका असर था कि लोग जो थे जैसे वहां पे जाकर रहना और वहां पे जिंदगी जो है वो बसर करना, तो अरब के लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उससे जो है वो डरते हैं, उससे जो है वो दूर रहना चाहते हैं। तो असल बात क्या पता चलती है कि जिस जगह अल्लाह का अजाब आ जाए, तो आप सोच लें कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी जगहों से सहाबा को क्या कहते थे, गुजर जाओ और इनसे इबरत हासिल करो। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगला सबक शुरू करते हैं। अगला सबक है हमारा सबक नंबर 193 और आयत नंबर 141 से 191 तक।